ہم یہ بات سیکھ رہے تھے کہ چونکہ یگانگت میں اتحاد میں ایسی برکت ہے کہ جب خدا کے لوگ متفق ہو کر کوئی کام کرتے ہیں تو کوئی ایسا کام ہے نہیں جو وہ کر نہ سکے، کامیابی یقیناً ان کے قدم چومے۔ شیطان کو اس بات کا علم ہے کہ مسیح یسوع نے کہا تھا کہ جس گھر میں اور جس سلطنت میں پھوٹ پڑ جاتی ہے، اختلاف ہو جاتا ہے، نفاق پیدا ہو جاتا ہے، لوگ متفق نہیں رہتے ہیں، تو وہ گھر ہو یا سلطنت ہو وہ قائم نہیں رہتی۔ تو لہذا کلیسیا جو خداوند کا بدن ہے اس کو ابلیس کی طرف سے نقصان پہنچانے اور تباہ کرنے کے مختلف ہرکنڈے ہیں جو ابلیس استعمال کرتا ہے، اور ان میں جو سر فرست ہے وہ ہے خدا کے لوگوں میں اختلاف پیدا کرنا، یگانگت اور اتحاد کی طاقت کو توڑنا تاکہ یہ کمزور ہو جائیں، ایک دوسرے کے ساتھ پیوست ہو کر، ایک ایمان ہو کر انجیل کے ایمان کو پھلانے کے لیے جانفشانی نہ کریں، ان میں خود ہی پھوٹ پڑ جائے۔ تو دو باتیں اس تعلق سے میں نے بتائی تھیں کہ وہ کلیسیا میں یا تو تعلیمی اختلافات جسے ہم بدعت یا بدعتیں کہتے ہیں، ہیریسیز کہتے ہیں، کہ صحیح راہ کو چھوڑ کر ایک نئی راہ اختیار کر لینا اور گمراہی کا، بدعت کا شکار ہو جانا، جس سے پھر نئے سے نئے فرقے وجود میں آتے ہیں اور خداوند کا بدن تقسیم ہو جاتا ہے اور جس سے شیطان کامیاب ہوتا ہے۔ دوسری بات ہم نے یہ سیکھی کہ کلیسیا چونکہ ایک انتظام ہوتا ہے جس کے مطابق کلیسیا چلتی ہے، اور انتظام کی بڑی خوبصورتی ہے، اس خوبصورتی کو ہم اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ ہماری جو ہیومن باڈی ہے، ہمارا جو بدن ہے، اگر اس بدن کے اندر کوئی ہڈی یا جوڑ نہ ہوتا تو انسان کس قسم کا ہوتا؟ انسان صرف گوشت ہی گوشت ہوتا، اس میں ہڈی نہ ہوتی تو انسان بڑا فرق ہوتا، لیکن اس بدن کے اندر ایک ہڈیوں کا ڈھانچہ ہے، سٹرکچر ہے، اس کے اوپر پھر گوشت اور نسیں چڑھی ہوئی ہیں، انسان جاذب نظر بھی ہے، پرکشش بھی ہے، اور اس کے بدن کے اعضاء جس مقصد کے لیے خدا نے اسے خلق کیا وہ کام بھی کرتے ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ صرف ہمارا ہاتھ کام کرے تو چونکہ اس میں ہڈیوں کے وساطے سے جوڑ ہے تو صرف ہاتھ ہی کام کرے گا، باقی بدن کام نہیں کرے گا، ٹھیک ہے۔ پاؤں ہم چاہتے ہیں کہ چلنے میں ہماری مدد کرے تو خدا نے ایک سسٹم رکھا ہے جسے ہم ایڈمنسٹریشن کہہ سکتے ہیں، انتظامی ڈھانچہ کہہ سکتے ہیں۔ تو شیطان جہاں تعلیمی اختلافات، ڈاکٹرائنل ڈفرینسز پیدا کر دیتا ہے کہ لوگ ہیں کہ ہم ان کے ساتھ متفق نہیں ہیں، ہم اس تعلیم کے ساتھ متفق نہیں ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں، ہماری قائلیت یہ ہے، ہم اس بات کو مانتے ہیں، ہم غیر زبانیں نہیں مانتے، ہم غوطے کا بپتسمہ نہیں مانتے، ہم فلاں سچائی نہیں مانتے، تو اس طریقے سے لوگ ایک دوسرے سے دور ہو جاتے ہیں، گروپ بن جائیں گے، فرقے بن جائیں گے، اور نئی سے نئی جماعتیں وجود میں آ جائیں گی تعلیمی اختلافات کی بنا پر۔ اس لیے تیموتھیس کو خط لکھتے ہوئے بزرگ پولس رسول نے کہا تھا اپنی اور اپنی تعلیم کی، اپنی اور اپنی تعلیم کی حفاظت کر، کیونکہ تعلیم یا ڈاکٹرن ایک ایسی چیز ہے جو مذہب کی طرح انسانوں میں اختلاف کی دیوار کھڑی کر دیتی ہے۔ اور پھر میں نے بتایا کہ انتظامی معاملات ہیں، وہ بھی بڑے کہہ لیں کہ پھوٹ پڑنے اور اختلاف کا باعث بنتے ہیں، قواعد و ضوابط کے ساتھ متفق نہ ہونا، فیصلہ جات کے ساتھ متفق نہ ہونا، طرفداری کرنا یا طرفداری کے الزامات لگانا، اور اپنی انا کی خاطر، اپنی ایگو کی خاطر کہ میری بات نہیں مانی جاتی اس لیے میں ناراض ہوں، تو اس طرح سے ایک دوسرے سے دور ہو جانا، تو یہ ایک طریقہ ہے پھوٹ ڈلوانے کا، خدا کے لوگوں میں تفرقہ پیدا کرنے کا، تاکہ ان کی جو روحانی طاقت ہے جس کے بارے میں لکھا ہے کہ اسی کوشش میں رہو کہ روح کی یگانگی صلح کے بند سے بندی رہے، تو ان کی یگانگت جو ہے وہ قائم نہ رہے، تو اس طرح سے یہ لوگ جو ہیں وہ کمزور ہو جائیں، ایک دوسرے سے دور دور ہو جائیں۔ آج ہم ایک دوسری بات کریں گے، ایک دوسرا جو وار یا ہتھیار، کلیسیا جو خداوند کا بدن ہے جس کو مسیح نے اپنی قیمتی خون سے مول لے رکھا ہے، اس کو نقصان پہنچانے کے لیے ایک اور حربہ تاریکی کی قوتیں استعمال کرتی ہیں، اور وہ حربہ ہے دنیا داری۔ ابھی ہم نے ایک حوالہ پڑھا ہے جس میں آخری زمانے کی ایک منظر کشی کی گئی ہے یا تصویر کشی کی گئی ہے کہ آخری وقت میں دنیا کس ٹائپ کی ہوں گی، کیسے دکھائی دے گی، کیسے نظر آئے گی، اس کی تصویر کیا ہوگی، وہ ہم نے پڑھی ہے۔ اور اس میں سرفرست لکھا ہے کہ آخری زمانے میں آدمی خود غرض ہوں گے۔ ٹھیک ہے، خود غرض کا جو ڈیپ ڈاؤن مطلب ہے وہ ہے سیلف لور، یعنی آخری زمانے میں لوگ اپنے آپ سے پیار کریں گے، اپنے آپ سے، اور جب ان کو کوئی نقصان پہنچے گا تو وہ بری طرح سے پیش آئیں گے دوسروں کے ساتھ، وہ اپنا جھنڈا، اپنی خواہشات، اپنی راہیں، اپنی صلاح، اپنی رائے، اپنا حکم، اپنے طور طریقے، اپنی چاہتیں وہ منوائیں گے۔ ایسے لوگ خود غرض ہوتے ہیں، اور اس کا تمام طرح کے دنیا کے اور چرچز کے انتظامی معاملات سے بھی اس کا تعلق ہے، اور اس کا بڑا تعلق شادی شدہ زندگی کے ساتھ ہے۔ جو شوہر اپنے آپ سے پیار کرتا ہے وہ چوٹی کا خود غرض ہوگا، اس کی غرض پوری ہوئے گی تو وہ خوش رہے گا، اور اس کی غرض کو کوئی نقصان پہنچے گا تو وہ تحش میں آئے گا۔ اسی طرح سے عورتیں ہو سکتی ہیں، خواتین ہو سکتی ہیں، کوئی بھی شخص ہو سکتا ہے جو اپنے آپ سے پیار کرتا ہے، جو اپنی انا کے لیے سب کچھ کرتا ہے، دوسرے کی اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے، تو آخری زمانے میں لکھا کہ آدمی خود غرض ہوئیں گے، پھر پیسے کا بہت پیار ہوگا، زردوست ہوئیں گے، ان کی زندگی پیسے کے گرد گھوم رہی ہوگی، کیسے زیادہ بنایا جا سکتا ہے، کیسے اور کمایا جا سکتا ہے، اور چونکہ وہ خدا کی نسبت عیش و عشرت کے زیادہ دل دادا ہوں گے، تو لہٰذا وہ ایسی دعوتیں، ایسی پارٹیاں جہاں ہلا گلا ہے، میوزک ہے، جہاں خوشی ہے، کوئی ناچ ہے، کوئی ان کا جسم اس سے خوش ہوتا ہے، وہ ایسی محفلوں میں وہ جائیں گے۔ میں کراچی کے کو آج یہاں سے کوئی 30 کلومیٹر کو جگہ ہے، تو میں وہاں پر ہر سوموار کی شام کو عبادت کرواتا تھا، کو 15-20 سال میں نے کروائی ہے، اور ایک دن میں گیا تو میں بڑی مشکل سے، اس وقت میرے پاس سائیکل بھی نہیں ہوتی تھی، تو میں جاتا تھا بسوں میں کبڑا ہو کے، اور میں ان جگہوں پہ پہنچتا تھا۔ میں وہاں پر پہنچا تو جس جگہ میں جاتا تھا، میں نام نہیں لے رہا، تو وہاں سے جو بس اسٹاپ تھا آگے سے کوئی 1-2 کلومیٹر پیدل جانا پڑتا تھا، کوئی بس نہیں جاتی تھی، تو جہاں تک بس گئی وہاں تک تو میں گیا، آگے میں پیدل جا رہا۔ تو جب میں آبادی کے قریب پہنچا تو میں نے دیکھا کہ سازوں کی آواز آ رہی ہے، ایسی میری ذہن میں آیا، میں نے کہا آج بڑی چرچ میں بیداری آ گئی، ابھی تو میں پہنچا بھی نہیں تو سارے جمع ہو کے کوئی گیت شیت گا رہے ہیں، سازوں کی آواز آ رہی ہے۔ جیسے جیسے میں نے قریب پہنچا تو سازوں کی آواز کچھ فرق تھی، تو جب جہاں پر کسی حویلی میں ہم عبادت کرتے وہاں میں پہنچا تو دو تین آدمیوں کے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا، تو ٹائم میں نے دیکھا کہ ٹائم تو عبادت کا ہو چکا ہے، تو ساز ابھی بھی بج رہے تھے، تو جو بندے میرا انتظار کر رہے تھے میں نے ان کو کہا کہ یہ کہاں گئے ہیں لوگ، یہ ساز کہیں بج رہے ہیں، کہیں اور ہو رہی بات، کہہ لگے نہیں نہیں وہ دراصل وہ کہ ہے نا پڑوسیاں دے گھر چ نا ہجڑے آئے نے، وہ ناچ رہے ہیں، اور ساری کلیسیا ہجڑوں کا ناچ دیکھنے گئی، اور میں اکیلا ہوں بیوقوف کی طرح وہاں بیٹھا ہوں۔ خدا کا کلام سچا ہے، انسانی فطرت ہے، وہ روحانی لوگ ہوتے ہیں، خدا سے پیار کرنے والے تو ہوتے ہیں جو اس طرح کی چاہتوں اور آزمائشوں کو کچل کر، مسلوب کر کے وہ خداوند کے ساتھ وفادار رہتے ہیں۔ آخری زمانے میں لوگ عیش و عشرت کے دل دادا ہوں گے، ڈھیٹ ہوں گے، گھمنڈ کرنے والے ہوں گے، और बच्चे माँ बाप के नाफरमान होंगे। इंसान के पास जो कुछ भी होगा वो नशुक्र ही होगा कि हमारे पास ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, कनात करने वाला नहीं होगा। ये एक तस्वीर खींची गई आखिरी जमाने के लोगों की, उनमें से एक जिसका आज के वाज के साथ ताल्लुक है वो क्या है? पांचवीं आयत में लिखा है कि वो दीनदारी की वजह तो रखेंगे, अंग्रेजी में लिखा है फॉर्म ऑफ गॉडलीनेस, यानी बजाहिर तो वो रूहानी नजर आएंगे लेकिन उसके असर को कबूल, यानी कलाम सुनेंगे, बाइबल उनके हाथ में होगी, रूहानी बातें वो करेंगे, शायद इबादतों में भी रेगुलर हो। फॉर्म ऑफ गॉडलीनेस, रूहानी दिखाई देना, लोगों का हमें रूहानी समझना, लेकिन रूहानी असर कोई नहीं है बीच में, कोई सबूत कोई नहीं। और ये आज की कलीसिया के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है कि सब कुछ करो, कलाम भी सुनो, तारीफ भी करो, बड़ा अच्छा था, सब कुछ करो, हदिये भी दे दो, सब कुछ करो, लेकिन खुदा से ना डरना और दिल लगाकर एहतियात से खुदा के सब हुक्मों पर अमल ना करना। तो जहरी रूहानियत जिसे देनदारी की वजह कहते, अपीयरेंस ऑफ अ गॉडली पर्सन, असर अंदर कोई नहीं है। ऐसा ही है जैसे फटकड़ी की तरह, फटकड़ी की तरह अगर नमक नजर आए, नमक का कोई टुकड़ा नजर आए लेकिन उसके अंदर नमकीनी ना हो, तो आम पत्थर में और उसमें फर्क कोई नहीं है, क्योंकि आम पत्थर में और नमक जो पत्थर नमा दिखाई देता है, फर्क यह है कि आम पत्थर में नमकीनी नहीं है। ये जो पत्थर है जिसे हम नमक कहते हैं वो अपनी नमकीनी की वजह से दूसरे पत्थरों से फर्क है, और उसका जहां भी वो मौजूद होगा उसकी नमकीनी या उसका असर दिखाई देगा। तो अब्लीस ये कोशिश करता है कलीसिया में हर जो रूटीन की इबादत होती है, जिससे भी इंसान रूहानी बजाहिर दिखाई दे सकता है, वो सब कुछ किया जाए, उसके असर को कबूल ना किया जाए। और ये है दीनदारी, जिसको इफ़सियों के खत के दूसरे बाब में दूसरी आयत में दुनिया की रवश कहा गया है। दुनिया की रवश, द कोर्स ऑफ वर्ल्ड, जिस रास्ते पे दुनिया चलती है, जैसे दुनिया कर रही है, जैसे दुनिया चाहती है, जैसे दुनिया की तरजीहात है। और मैं देखता हूं कि इस दुनिया में बतेरे गुनाह, बतेरे गुनाह हम सिर्फ दुनिया को खुश करने के लिए करते हैं कि दुनिया क्या कहेगी। किसी घर में डेथ हुई और वो इतने गरीब थे, इतने गरीब थे कि कफन के पैसे कोई नहीं, और मुझे मालूम था, मुझे जब पता चला तो खुदा ने हमने फजल दिया, हमने कहा ये पैसे ले, ये कफन वगैरह का कोई बंदोबस्त कर लें। जब हम जनाजे पर से वापस आए कि चार पांच बिरयानी की दुकान देगे पड़ी हुई बुलाई हुई, मैंने उनको कहा कि आप तो कह रहे थे हमारे पास कफन के भी पैसे नहीं है, तो ये मैं समझता शायद किसी और ने हमदर्दी करके तो ये देगे पकवाई होंगी। तो पता चला कि वो किसी से कर्ज लेके तो बिरयानी की देगे पकवा ली है। मैंने कहा कि आपके पास कफन का पैसा नहीं था। कह लगे फिर भाई जी की करिए, फिर शरीका भी है, दुनिया भी है, कहने के रोटी नहीं खुआ सके। तो ये दुख की बात है। मैं सिर्फ एक मसाल आपको दे रहा हूं, बहुत सारे काम अगर हम अपने गिरेबान में झांके, बहुत सारे काम हम सिर्फ जाहिरदारी की खातर, दुनियादारी की खातर करते हैं। कई दफा जनाजों पर मैंने लोगों को देखा है, हंस हंस के गपशप लगा रहे होंगे, तो मैं सोचता हूं आए तो ये अफसोस के लिए थे। कभी बिशपों के खिलाफ बातें कर रहे होंगे, कभी सियासतदानों के खिलाफ कर रहे होंगे, आपस में बैठे होंगे, गपशप लगा रहे होंगे, लेकिन आए हैं अफसोस के लिए। क्यों? सिर्फ ये है कि वो कहें ना कि मौत हुई, अफसोस के लिए नहीं आए। चलो हो आइए, उधर भी हो आइए। क्रंथस की कलीसिया को खत लिखते हुए बुजुर्ग पौलुस, उसने कहा जो इतकाब के साथ नहीं वो गुनाह है। यानी जो बात हम सच्चाई से नहीं करते, कायलियत के साथ नहीं करते, सिर्फ हम दिखाने के लिए, दुनियादारी रखने के लिए हम करते हैं, इसको बाइबल में दुनिया की रवश कहा गया है। और ईमानदार को बताया गया है कि तुम्हें भी खुदावन ने जिंदा किया है, जो अपने गुनाहों और कसूरों के अतबार से मुर्दा थे और पहले दुनिया की रवश पर चलते थे, पेशतर दुनिया की रवश पर चलते थे और जिस्म और अकल के अरादे पूरे करते थे, लेकिन अब खुदावन ने आपको और मुझे चेंज कर दिया, तब्दील कर दिया है। तो दुनियादारी से बहुत बड़ा खतरा है, बहुत बड़ा। एक दिन एक खातून मेरे पास आई, कहने लगी हमारे बच्चे की मंगनी, हमारी बड़ी ख्वाहिश है कि आप वहां पर कलाम सुनाएं। तो मैंने कहा कि वो आप कौन सी जमात से हैं? बताया कि हम फलां जमात से हैं। मैंने कहा कि वो आपके फादर साहब बुरा मनाएंगे जब वो आपके रूहानी सरदार है, पासबान है, तो मैं कैसे वहां कलाम सुना सकता हूँ, तो मैं नहीं सुनाऊंगा। कह लगे नहीं नहीं साढ़ा सारा खानदान कहते, उन्होंने बुलाओ, उन्होंने बुलाओ। मैंने कहा मैंने आपको बता दिया मैं नहीं आ सकता, मैं वहाँ कलाम नहीं सुना सकता क्योंकि फादर बुरा मनाएंगे। कहने लगे कि नहीं असी जे फादर ना गल कर लीए। मैंने कहा जी कर लोगे, उन्हें इजाजत होगी मैं जरूर आ जाऊंगा। गए फादर ना गल कर ली, फादर ने कहा अच्छा जी वो कलाम सुना दें, मैं मंगनी पढ़ता हूँ। मैं चला गया, कलाम सुनाया मैंने। वो 10-20 लोग मेरे पास आ गए, कहने लगे जी असी तो अज एडा सानू मजा आया, असी तो मंगनी तो पहली दफा इस तरह का कलाम सुने। मैंने कहा अच्छा खुदा का शुक्र, खुदा ने अगर आपको बरकत दी है। अभी हम बातें कर रहे हैं तो 20-22 साल की लड़कियां स्टेज पर चढ़ के, गैर मसीही भी थे, तो म्यूजिक शुरू तो डांस शुरू। मैंने उस लड़की की माँ को बुलाया, मैंने कहा मैं भैंस कलोनी से भागा हूं आधी मीटिंग छोड़कर आपके बच्चे के इधर कलाम सुनाने के लिए, और अगर आपने ये तमाशा करना था तो आप 1 महीने से मेरे पीछे क्यों लगी हुई थी? जवाब क्या था? भाई जी फिर दुनिया तो नहीं ना छड़ी जाती। मैंने देखा खुदा की तोहीन कर लो, खुदा की बेइज्जती कर लो, दुनिया ना छोड़ना। दुनिया का खतरा मुझे भी है, आपको भी है, ये नहीं कि किसी एक शख्स को, एक खानदान को है। इस दुनिया में रहते हुए अपने आप को दुनिया से बेदाग रखना, अपनी पोशाक पर दुनियादारी के छींटे ना पड़ने देना, यही तो मसीही सलीबी जिंदगी है, यही तो वो सुकड़ा रास्ता है, यही तो खुदा के लिए वक्फ शुदा ऐसी कुंवारी की तरह जो अपना कुंवार पर अपने होने वाले शौहर या अज़दवाज के लिए बचा के रखती है, यही तो हमारी जिम्मेदारी है कि दुनिया और उसके कामों के साथ हम अलूदा ना हो। तो अब्लीस ये चाहता है कि इंसानों को दुनियावी कामों में, रख रखाव में और इन धंधों में उलझा कर रखा जाए, और लोग खुदा खुदा भी करें, दीनदारी की वजह भी रखें, लेकिन असर कोई ना हो, और यही लोग बहुतों के लिए ठोकर का बाइस बन जाए, और लोग कहें कि ये जो कुछ ये कर रहे हैं तो इनमें और हमें क्या फर्क है, और यही खुदा की तोहीन होती है, यही खुदा की बेइज्जती होती है और पाकरू रंजीदा होता है। तो दुनिया की रवश जिसमें रियाकारी शामिल है, अमाल की किताब का 5वां बाब काफी है हमें ये बात समझाने के लिए कि खुदा परस्ती का इकरार करने वाले मियां बीवी ने जायदाद बेची और ऐसी चर्च के अंदर इज्जत बनाने की खातर कि दूसरे जायदादें बेच बेच कर लाकर शागिर्दों के पांव पर रख रहे हैं, तो हमारी भी चर्च के सामने बड़ी इज्जत हो कि ये भी बड़ा मुखलस खानदान है, चर्च के लिए बड़ा बायस से बरकत है, जायदाद बेची, कुछ पैसे रख लिए और लाकर बता दिया कि हमने तो सब कुछ लाके था। खुदा उनके कदमों में रख दिया रियाकारी की। पूछा गया हनन्याह सफीरा की बात हो रही है, क्या इतने ही को जायदाद बेची थी? हाँ इतने को बेची, सब ला के रख दिया। आगे आप वाकया से वाकिफ हैं कि कैसे अबलीस ने इन दोनों को सिर्फ चर्च में इज्जत हासिल करने की खातिर मरवा दिया। रियाकारी, दुनियादारी के सब जो जो कलीसिया में भारी हदिया जात देते हैं, अतिये देते हैं, डोनेशंस देते हैं, लोग उनको बड़ा सराहते हैं, उनकी इज्जत होती है, तो हमारी भी हो। कामयाब अबलीस हुआ, कामयाब अबलीस हुआ, खुदा के खादम से और खुदा से और उसके रूह से झूठ बोला, हमने इतने कुछ जायदाद बेचकर सब ला के रख दिया। दोनों मियां बीवी हनन्याह और सफीरा जो निजात याफ्ता थे, इस आजमाइश में पड़ के तो हलाकत का शिकार हुए। तो दुनियादारी से बचना, दुनियादारी एक बड़ा खतरा है। अगर आप मुकाशवा की किताब का तीसरा बाब और उसकी पहली आयत से पढ़ें तो वहां सरदीस की कलीसिया को खत लिखा गया है और सरदीस की कलीसिया को कहा गया, मैं तेरे कामों को जानता हूं। कलीसिया को कहा जा रहा है, मैं तेरे कामों को जानता हूं, तू जिंदा कहलाती है लेकिन है क्या? मुर्दा। चर्च है, कलीसिया है, नाम भी लगा होगा, कुछ छोटा मोटा कहीं बोर्ड भी लगा होगा, कहलाती जिंदा है लेकिन तू मुर्दा है। मुर्दापन क्या है? मैंने तेरे किसी काम को अपने खुदा के हजूर पूरा नहीं पाया। कलीसिया कहलाना और मुर्दा कलीसिया तो ना ही हो तो उससे बेहतर है, लेकिन मुर्दा क्यों थी? मुर्दा क्यों थी? दुनियादारी, दुनियादारी आ गई है। कलीसिया एक बैरी जहाज की तरह भी है या कश्ती की तरह भी है, और यह दुनिया बहुत बड़ा समुंदर है जिसमें कलीसिया नूह की कश्ती की तरह तैर रही है। इस कश्ती में सिर्फ इतना सा सुराख हो ना, इतना सा सुराख तो समुंदर या दरिया का पानी इतने से सुराख से आहिस्ता 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 इस कश्ती में दाखिल होकर एक वक्त आएगा सारी कश्ती को डुबो देगा, थोड़ा सा सुराख। इसीलिए जब नूह के वक्त कश्ती बनाई गई थी तो जो तख्ते आपस में जोड़े गए थे उनमें दरार थी, अगर वो दरार भरी ना रहती तो नूह की कश्ती भी डूब जाती। 40 दिन 40 रात में बरसा, लेकिन खुदा ने उसको हदायत दी थी कि जब ये कश्ती बनाई जाए और इस तरह से फट्टे या तख्ते जब जोड़े जाएं, इसमें दरार होगी तो लिखा है कि इसके अंदर और बाहर राल लगाना, राल, और राल जो है वो एक ऐसी चिकनी मिट्टी की तरह थी, दलदल की तरह थी जिसमें ऑयल मिला हुआ था। तो जब उसको उसको उन सराखों को दरारों को अंदर और बाहर से उस राल से या चिकनी मिट्टी से भर दिया गया तो फिर पानी उसमें नहीं आ सकता था। और जो लफ्ज वहां राल के लिए लिखा है वही लफ्ज मसीह के कफारे के लिए है, अटोनमेंट टू कवर, दरार कवर की जाए इस राल से चीकनी मिट्टी से। इसी तरह से दुनिया का पानी बुराई बदी नरास्ती खाशात ऐशोइशरत को रोकने के लिए मसीह का खून है जो हमारे अंदर की दरारों को ढांपता है कि ताकि बदी का पानी हमारे अंदर दाखिल ना हो जाए। कितनी उम्दा मिसाल है एक मछली की कि मछली समुंदर के नमकीन तरीन पानी में परवरिश पाती है, लेकिन कुदरत की शान आप देखिए कि उसकी स्किन खुदा ने ऐसी बनाई है कि वो पानी जिसे मुंजमद करके और उसमें से नमक निकाला जाता है, मछली खुदा ने समुद्र में पैदा किया है, दिन रात समुद्र में रहती है, लेकिन उसके उसकी बनावट जो है वो इस किस्म की है कि समुद्र का नमकीन पानी मछली के गोश्त में सरात नहीं करता। इसीलिए जब हम मछली पकाते हैं तो उसको पहले नमक लगाना पड़ता है। मैं और आप इस दुनिया के बड़े समुंदर में एक मसीही की तरह, एक मछली की तरह नए सिरे से पैदा करके रखे गए हैं, ताकि दुनिया के अंदर जो कुछ हो रहा है उसकी नमकीनी, उसकी बदी, उसकी ऐशो इशरत, उसकी रवशें, उसके ढब, उसके तौर तरीके, उसकी चाहतें, वो हमारे अंदर दाखिल ना हो और हम एक ऐसी मछली बनकर इस दुनिया में जिए हैं जिनमें दुनिया का नमक, दुनिया के समुंदर के पानी का नमक, या दुनियादारी या दुनिया के गुनाह और दुनिया की रवश हमारे अंदर सरायत ना कर सके। इसी बात को खुदावन ने सादा से अल्फाज में यूं कहा था कि दुनिया का सरदार आता है, आगे का लिखा, उसका मुझ में कुछ नहीं। यानी शैतान इस जहान का खुदा है, वो इस दुनिया के लोगों का बादशाह है, जिसके बारे में उसने खुद भी खुदावन यीशु मसीह को एक पहाड़ पर ले जाकर कहा था, सारी दुनिया और उसकी शान और शौकत और सल्तनतें दिखाई थी और कहा था कि ये मेरे इख्तियार में है, अगर तू मुझे झोंककर सजदा कर दे मैं सब तुझे दे दूंगा। तो मसीह का ये कहना कि दुनिया का सरदार आता है, उसका मुझ में कुछ नहीं है, मेरा ख्याल है कि इस सच्चाई को समझने के लिए अगर हम आज की बीमारियों पर नजर दौड़ाएं तो समझना आसान हो जाता है। कैसे हम समझ सकते हैं? अगर किसी को किसी के बारे में शक हो, अगर किसी को अपने बारे में शक हो कि शायद मुझे कैंसर तो नहीं हो गया, कैसे पता चलेगा? उसके टेस्ट करवाए जाएंगे कि इसके अंदर कैंसर के जरासीम है या नहीं है। अगर वो टेस्ट हो जाए, डॉक्टर कह दे कि आपको किसने कह दिया आपको कैंसर है, आपको ऐसी गलतफहमी, ऐसे डरे हुए थे आप, आपके टेस्ट में कोई जरासीम ऐसे नहीं, आप बिल्कुल ठीक है, शुक्र करो उस मालिक का। तो जब खुदावन्द यीशु मसीह कहते हैं कि दुनिया का सरदार आता है, उसका मुझ में कुछ नहीं, यानी वो जो शुरू से गुनाह करता है और करवाता है, उसके गुनाह करवाने की कोई तासीर या दुनिया की रवश मेरे अंदर नहीं है। आपको याद है कि उन्होंने ये भी अपनी जुबान मुबारक से फरमाया था कि जिस तरह मैं दुनिया का नहीं वो भी दुनिया के नहीं, मैंने इन्हें दुनिया में से क्या कर लिया है, चुन लिया, ये दुनिया के नहीं है। मेरा ख्याल है हर मसीही को अच्छी तरह यह बात समझ लेनी चाहिए कि मैं दुनिया में पैदा जरूर हुआ हूं, लेकिन मुझ में दूसरे इंसानों में फर्क यह है कि दूसरे इंसान एक दफा पैदा हुए हैं, मैं दो दफा पैदा हुआ हूं, मैं खुदा के कलाम से, खुदा के रूह से, नए सिरे से पैदा हुआ हूं, मैं नया मखलूक हूं, मैं पाकिस्तान का शहरी जरूर हूं, लेकिन इसके साथ साथ मैं आसमानी शहरी भी हूं, मैं इस दुनिया में मुसाफिर हूं, परदेसी हूं, मेरा असल वतन कहाँ है, आसमान पर है, मुझे वहां जाकर रहना है, मेरा नाम किताब हयात में लिखा हुआ है, मेरा मसीहा मुझे लेने के लिए आएगा, मैं हवा में उड़कर उसका इस्तकबाल ही नहीं करूंगा, मैं उसके साथ ही जा रहूंगा। अपने बारे में हमें समझ होनी चाहिए कि हम कौन हैं। इसीलिए लिखा है कि अपने आप को दुनिया में मुसाफिर और परदेसी जानो और इस दुनिया की बुरी ख्वाहिशात से इनकार करो, इसकी फिक्रों से बचो कि हमारे पास ये चीज़ नहीं है, वो चीज़ नहीं है, ये सारी चीज़ें मिटने वाली हैं। तो अब्रानियों के खत में बड़ी प्यारी बात लिखी है 11वें बाब में, ईमान के सूरमाओं के बारे में लिखा है, उनका सारा जिक्र करके कि वो कौन कौन थे, उन्होंने क्या क्या किया। तो लिखा है दुनिया उनके लायक ना थी, सब बोले दुनिया उनके लायक नहीं थी। वो समझते थे ये दुनिया को हमारे रहने की जगह नहीं है, हमारे लिए इससे बड़ी अजीम अच्छी जगह है जो खुदा ने तैयार की हुई है, हम शहीद हो के भी हम वहां चले जाएंगे तो हमारे लिए बहुत बेहतर। बहनों भाइयों, अपने आप से हम सवाल करें, जितने साल हो गए हमें खुदावन की पैरवी करते हुए, क्या हम दिल से, सच्चाई से, काबिलियत से, ईमान से कह सकते हैं कि दुनिया हमारे लायक नहीं। हम अपने आसमानी घर से मुलब्बस होने की आरजू रखते हैं। जो मसीही इस सच्चाई को नहीं समझता, उसको दुनिया की चीजों का लालच घेर लेगा। इसलिए लिखा है ना दुनिया से मोहब्बत रखो ना उन चीजों से जो दुनिया में। और रूहानी तौर पर बाइबल मुकद्दस की तफसीर के मुताबिक दुनिया के मानी फर्क हैं, गैर मसीही नहीं इसको समझ पाएंगे। मसीही तालीमात के मुताबिक दुनिया से मराद जिस्म की ख्वाहिश, आंखों की ख्वाहिश जिससे मुराद बुरी ख्वाहिश, और जिंदगी की शेखी। ये दुनिया को समझाने के लिए ये बताया गया है गालबन यानी का लफ्ज इस्तेमाल करके। दुनिया क्या है? जिस्म की ख्वाहिश, वो जिस्म की ख्वाहिश जो हमारे जिस्म के अज़ा से गुनाह करवाती है, जिस्म की ख्वाहिश, आंखों की ख्वाहिश, जो चीज हमारे हमें सांप की तरह डसेगी तब भी हम उसको अपने लिए फायदेमंद समझ के अच्छा हमें अच्छी लगती है, आंखों की ख्वाहिश। और जिंदगी की शेखी, बहुत सारी चीजों पे अपनी ताकत पर भरोसा करना और चीजों पर भरोसा करना जिंदगी की शेखी। आए मेरी जान तेरे लिए बहुत बरसों के लिए बहुत सा अनाज है, खा पी आराम कर चैन कर खुश रह। शेखी लिखा है नादान आज ही रात तेरी जान तुझसे तलब कर ली जाएगी। तो ये दुनियादारी, दुनिया की रवश, रियाकारी, दीनदारी की वजह रखना, उसका असर अंदर से नमूदार ना होना, जिसके बारे में लिखा था, लिखा हुआ है कि तुम्हारी रोशनी आदमियों के सामने चमके। तो ये असर है ना नूर के फर्जंदों का, उनके अंदर खुदा जो सरता पा नूर है उसकी रोशनी कुछ ना कुछ इंसानों के अंदर, मुकद्दसीन के अंदर भी होती है, और वो दुनिया में फिर चिरागों की मानद दिखाई देते हैं। वो पहाड़ पर बसे हुए शहर की तरह दूर से दिखाई देते हैं। इस शख्स के अंदर खुदा रहता है, ये शख्स खुदा से डरता है, ये खानदान खुदा से प्यार करता है, ये खानदान अय्यूब की तरह बदी से दूर रहता है। तो जो शहर पहाड़ पे बसा हुआ है वो छिप नहीं सकता। सो दुनियादारी एक बहुत बड़ा चैलेंज है हम तमाम इंसानों के लिए, और दुनिया की रवश, दुनिया क्या पसंद करती है, दुनिया क्या चाहती है, इसके बायस खुदा के लोग गुनाह के साथ समझौता या कंप्रोमाइज करने की भी आजमाइश में पड़ जाते हैं। वो बाइबल की सरियन लिखी हुई सच्चाइयों को जो अजमूदा है اور تاریخی ہیں اور ازل سے ہیں، ان کو ایک طرف رکھ کر تو وہ ان کو بدل ڈالیں گے یہ کہہ کر کہ یہ آج کی دنیا ہے، یہ وہ پرانا وقت تھوڑی ہے، یہ آج کی دنیا ہے۔ اسی کو ہم مڈرنٹی کہتے ہیں، جدت پسندی کہتے ہیں، نئی سے نئی چیزوں کا سامنے آنا، رویوں کا سامنے آنا، چاہتوں، اصولوں، قوانین کا، لوگوں کا، فیشن کا، طور طریقوں کا، ترجیحات کا سامنے آنا اور پرانے راستے چھوڑ کر ان کی طرف راغب ہو جانا۔ اور جو پرانی بات کرے اس کو کہنا ہے جاہل ہے، یہ کون سی دور میں جی رہا ہے، آج نئی دنیا بدل گئی ہے، یہ پرانے وقت کی باتیں کرتا ہے۔ بہنوں بھائیوں، خدا کا ایک نام ہے قدیم الایام، خدا بدلتا نہیں ہے، کچھ صدیوں کے بعد کوئی نیا خدا وجود میں نہیں آ جاتا ہے، خدا کے ارادے اور منصوبے بدلتے نہیں ہیں، خدا کی رکھی ہوئی بنیاد یا نیو جو پڑی ہوئی ہے وہ تبدیل کر کے نئی بنیادیں نہیں رکھی جاتی ہیں، سوا اس نیو کے جو پڑی ہوئی ہے، اس کو چھوڑ کر آج کی جدت پسندی میں ہم نئی راہیں نہیں نکال سکتے۔ کبھی اخلاقیات کا یہ معیار تھا کہ وہ کام جن کا اخلاقیات کے ساتھ تعلق ہے، لوگ خدا کے خوف میں رہتے ہوئے ذمہ داری سے ان اخلاقی تقاضوں کو پورا کرتے تھے۔ آج بدلتی ہوئی دنیا کے ساتھ ساتھ آج کئی گناہوں کو آج کی دنیا گناہ ہی نہیں سمجھتی ہے، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ آج نئی دنیا ہے، یہ آج کا دور ہے، آپ دکیا نوس ہیں، آپ کنزرویٹو ہیں، آپ پرانی باتیں کرتے ہیں، آج دنیا بدل گئی ہے، اور دنیا جس کی خواہش مٹتی جاتی ہے، دنیا جو بدلتی جاتی ہے، دنیا کے بدلتے ہوئے تقاضوں کے ساتھ بدل جانا اور خدا کے کلام اور سچائیوں کو پامال کر دینا، یہ ایک بہت بڑی ہماری غلطی ہوگی جو ہمیں روحانی طور پر کمزور کرے گی، اور خدا کے کلام کی توہین ہو گئی۔ چند سال پہلے میں بی بی سی پر نیوز دیکھ رہا تھا، تو ایک پادری صاحب، انہوں نے پورا اپنا گاؤن وغیرہ پہنا ہوا، تو ایک خرگوش اور ایک خرگوشنی کا بائبل سامنے رکھ کر خرگوش اور خرگوشنی کا نکاح کر رہے تھے۔ میں تو سر پکڑ کے بیٹھ گیا، میں نے کہا اس اسلامی ملک میں کسی نے یہ دیکھ لیا تو وہ ہمارے مذہب کے بارے میں کیا رائے قائم کرے گا۔ خرگوش، مطلب سنی سنائی بات نہیں، میں تو اپنی آنکھوں کی بات دیکھ کے بات کر رہا۔ سخت مرد اور مرد کے ساتھ جنسی تعلق رسیاہی کے کام خدا کے حضور مکروہ ہے، کرسچن کنٹریز قانونی حیثیت دے رہے نہیں دے رہے، کیوں؟ جدید دور ہے، آج کی دنیا ہے، کیا فرق پڑتا ہے؟ دو عورتیں آپس میں شادی کر کے میاں بیوی کے طور پر رہ رہے ہیں، اس میں کیا حرج ہے؟ دو آدمی ایک دوسرے کے ساتھ شادی کر کے رہ سکتے ہیں، قانون ان کو تحفظ دیتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ پچھلے چند سالوں کی بات ہے، انگلستان میں ایک بیکری تھی اور بڑی مشہور بیکری تھی، اور اس کے جو مالک تھے وہ بڑے روحانی قسم کے ایماندار تھے، خدا پرست تھے۔ ان کے پاس ایک بندہ آیا، کہنے لگا ہماری ویڈنگ انیورسری ہے، میں کیک بنوانا ہے۔ انہوں نے کہا بتاؤ بھائی کتنے پاؤنڈ کا آپ نے بنانا ہے، چلے بکنگ کروائیں۔ انہوں نے بتایا جتنے پاؤنڈ کا۔ ساتھ اس نے یہ کہا کہ دیکھیے جو کیک آپ بنائیں گے اس پہ آپ نے، اس کے اوپر آپ نے ایک تصویر بنانی ہے، ایک مرد ہے وہ دوسرے مرد کا بوسہ لے رہا ہے، تو یہ آپ نے بنانی ہے۔ ان کو سمجھ آ گئی کہ یہ ویڈنگ نرسری جو ہے نا، یہ کہیں ان دو مردوں کی ہوئے گی، उन्होंने कहा कि ये क्रिश्चियन मालिक है जिनकी बेकरी है, हम इस तरह का काम नहीं करते, ये कैसे हो सकता है? हम हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी लिख देंगे, आप एक मर्द और औरत की आप कहते तस्वीर हम वो भी बना देंगे, ये नहीं हम बना सकते। उसने जाके मुकदमा कर दिया। उसने कहा कि ये बेकरी वाले जो है ये हुकूमत का कानून नहीं मानते, जब मैं कानून हमें तहफ़ देता है कि मर्द और मर्द की शादी जायज है तो ये केक पर ये तस्वीर क्यों नहीं इन्होंने इनकार किया? हुकूमत ने बेकरी को ताला लगवा दिया कि आपने कानून के खिलाफ, आपको जो कुछ इन्होंने कहा आपको करना चाहिए था। जिन बेचारों का कारोबार इतना अरूज पर था, ताला लगवा दिया, वो बेचारे टुकड़ों पर आ गए। कलीसिया के लोगों को पता चला कि हमारे चर्च की एक फैमिली के साथ ये काम हुआ है, उन्होंने बेचारों ने आपस में फंड जमा करके उनको चार पैसे दिए और वो बेचारे सरवाइव किए। बहनों भाइयों, आज हम इस दुनिया में रह रहे हैं। मुझे नहीं मालूम कि मैं आपको समझा पाऊंगा या नहीं, खुदा की आवाज में जरूर पहुंचा रहा हूं आप तक और खुद भी सुन रहा हूं। कलीसिया को कमजोर करने का, गैर फाल करने का, गैर मुसर करने का, क्योंकि सिर्फ दीनदारी की वजह रखे रूहानी ताकत को, खुदा की आग, कोई रूल कुदस की नेमते, कोई मोजात, कोई अजीब का, कोई निशानात कभी इनमें नजर ना आए, ना खुदा इनमें नजर आए। दुनियादारी का वार, मिली जुली भीड़, गेहूं के साथ कड़वे दाने भी बो दिए जाएं, लोग फॉर्म ऑफ गॉडलीनेस रखें, बज़ाहिर रूहानी नजर आए, लेकिन जब कलाम के तराजू पर तोले जाएं तो ये कम निकले, पूरे ना उतरे, तो ये बहुत बहुत बड़ा हम में से हारे खतरा, हम में से हारे को, इससे हमें बचने की जरूरत है। बच हम कैसे सकते हैं जब हमारे दिमाग में ये बात बैठी हो, हम दुनिया के नहीं, दुनिया अपनी सी कहती है, दुनिया अपनों को अजीज रखती है, दुनिया अपनों को नहीं सताती, वो उनको सताती है जो आसमान के शहरी है। इसलिए मसीह ने कहा कि जिस तरह मैं दुनिया का नहीं हूं, जो कुछ उन्होंने मेरे साथ किया तुम्हारे साथ भी करेंगे, इसलिए कि तुम दुनिया के नहीं हो, मैंने तुम्हें दुनिया में से चुन लिया है, अलग कर दिया है। क्या मेरी और आपकी ये अंडरस्टैंडिंग, हमारी ये समझ है कि मैं वक्ती तौर पर दुनिया में जी तो रहा हूं, जी तो रही हूं, लेकिन मैं रूए जमीन पर मुसाफर और परदेसी हूं, मेरा इस दुनिया में कोई कायम रहने वाला शहर नहीं है, मैं अपने आसमानी घर से मुलब्बस होना चाहता हूं, मैं मसीह की राह देखता हूं, मैं उसके आसमान पर से आने का मुंतजर हूं। अपने आप को अगर हम इस हैसियत से जानेंगे तो हम दुनिया के बहुत सारे धंधों से, उसकी रंग रलियों से, उसकी ऐशो इशरत से, उसके तौर तरीकों से, और बहुत सारे ऐसे काम जो खुदा की तोहीन और रूहुल कुदस के रंजीदा करने के ज़िम्मे में आते हैं, हम उससे बच सकते हैं। लिहाजा अपने आप को जांचने की ज़रूरत है कि मैं दुनिया की खातर गुनाह से समझौता तो नहीं कर रहा, नहीं कर रही, मैं सरदीस की कलीसिया की तरह कहीं ऐसा शख्स तो नहीं हूँ कि जो हो हकीकत में मुर्दा और कहलाए जिंदा। इसलिए तो कहा गया था जो मुझसे आए खुदावन कहते हैं, उनमें से हर एक आसमान की बादशाही में दाखिल ना। पिछले साल मैं किसी सरकारी दफ्तर में बैठा तो बिशप साहब मुझे मिल गए, सुप्रीम कोर्ट के हवाले से किसी काम पे हम गए हुए थे, तो मुझे कहने लगे वो फलां आपका जानने वाला है, तो वो उसने दूसरी शादी कर ली, वो बिशप बन गया। मैंने कहा चाहिए कौन से आप मुझे कोई नई बात बता रहे हैं, मुझे पता है इस बात का नहीं, मैं तो होर गल दसनी, मैं दसो कि ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਬਿਸ਼ਪ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਸ਼ਪ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ, ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਯਾਰ ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਬੀਵੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਚੰਗਾ ਕੋਈ ਵਿਜ਼ਿਟ ਵੁਜ਼ਿਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾਲ ਵਿਜ਼ਿਟ ਵੁਜ਼ਿਟ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੀ। ਆਪ ਦਲੀਲ ਦੇਖੋ, ਜਿਸ ਸ਼ਖਸ ਕੀ ਅਕਲ ਪਰ ਅਬਲੀਸ ਨੇ ਪਰਦਾ ਡਾਲਾ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਕੀ ਆਪ ਅਕਲ ਦੇਖੀਏ, ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਤਾਲੀਮ ਦੇਖੀਏ ਔਰ ਇਨਸਾਨ ਕੀ ਹਕਮਤ ਦੇਖੀਏ। ਵਾਟ ਅ ਸੈਡ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ। ਔਰ ਫਿਰ ਬਦਨਸੀਬ ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਇਨਕੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਨਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਉਦੋਂ ਪਰ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਕੈਸੇ ਖੁਦਾ ਕੇ ਹਜ਼ੂਰ ਹਮਾਰੇ ਜੈਸੇ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਉਨ ਕਰਨੀਓਂ ਕਾ ਜਵਾਬ ਦੇਂਗੇ ਜੋ ਸਰੀਅਨ ਖੁਦਾ ਕੇ ਕਲਾਮ ਸੇ ਹਟ ਕਰ। ਤੋ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਸੇ ਹਮੇ ਬਚਨੇ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਮੱਤੀ ਕੀ ਇੰਜੀਲ ਕੇ 12ਵੇਂ ਬਾਬ ਕੀ 30 ਆਇਤ ਮੇਂ ਖੁਦਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਹਾ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਸਾਥ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਤਾ ਵੋ ਬਖੇਰਤਾ ਹੈ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਕੇ ਸਾਥ ਹਮ ਉਸੀ ਸੂਰਤ ਮੇਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਤੇ ਹੈ ਜਬ ਹਮ ਹਮਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਖੁਦਾ ਕੇ ਕਲਾਮ ਕੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋ, ਜਬ ਹਮ ਡਰਤੇ ਔਰ ਕਾਂਪਤੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਨਜਾਤ ਕਾ ਕਾਮ ਕੀਏ ਜਾਏ, ਜਬ ਹਮੇ ਮਾਲੂਮ ਹੋ ਕਿ ਹਮੇ ਆਪਣੀ ਮੁਖਤਾਰੀ ਕਾ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣਾ ਪੜੇਗਾ, ਜਬ ਹਮੇ ਮਾਲੂਮ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਕਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਬ ਤੱਕ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਦਈ ਕੇ ਸਾਥ ਰਾਹ ਮੇਂ ਹੈ ਉਸਕੇ ਸਾਥ ਜਲਦ ਸੁਲਾ ਕਰ ਲੇ, ਐਸਾ ਨਾ ਹੋ ਕਿ ਮਦਈ ਤੁਝੇ ਮੁਨਸਫ ਕੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰੇ, ਮੁਨਸਫ ਤੁਝੇ ਸਿਪਾਹੀ ਕੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰੇ, ਸਿਪਾਹੀ ਤੁਝੇ ਜਾ ਕਰ ਕੈਦ ਖਾਨਾ ਮੇਂ ਡਾਲ ਲੇ, ਔਰ ਜਬ ਤੱਕ ਤੂੰ ਵਹਾਂ ਸੇ ਕੌੜੀ ਕੌੜੀ ਅਦਾ ਨਾ ਕਰੇ ਤੂੰ ਵਹਾਂ ਸੇ ਹਰਗਿਜ਼ ਨਾ ਛੁਟੇ। ਲੇਕਿਨ ਹਮ ਇਨਸਾਨੋਂ ਕੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਮ ਕਲਾਮ ਪੜ੍ਹਤੇ ਹੈ, ਹਮ ਸੁਣਤੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸਕਾ ਅਸਰ, ਮਸਲਨ ਅਗਰ ਇਹ ਸਾਦਾ ਬਾਤ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪਕੋ ਯਾਦ ਦਿਲਾ ਦੂੰ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੋ ਯਾਦ ਦਿਲਾਊਂ, ਸਾਦਾ ਸੀ ਬਾਤ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਰੂਹ ਕੋ ਹਿਲਾ ਦੇਣੇ ਵਾਲੀ ਔਰ ਉਹ ਕਿਆ ਹੈ? ਅਗਰ ਤੁਮ ਆਦਮੀਓਂ ਕੇ ਕਸੂਰ ਮਾਫ ਨਾ ਕਰੋਗੇ ਤੋ ਤੁਹਾਰਾ ਆਸਮਾਨੀ ਬਾਪ ਵੀ ਤੁਹਾਰੇ ਕਸੂਰ ਮਾਫ। ਕਿਤਨੇ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਕੋ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਤੇ ਤੋ ਖੁਦ ਕਿਆ ਸਮਝਤੇ ਹੈ? ਮੈਂ ਨਜਾਤ ਯਾਫਤਾ, ਮੇਰੇ ਗੁਨਾਹ ਬਖਸ਼ੇ ਗਏ। ਕਲਾਮ ਕਿਆ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਤੂੰ ਉਸਕੋ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ੇਗਾ, ਤੇਰੇ ਬਖਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ। ਸਾਦਾ ਸੀ ਬਾਤ। ਕਿਤਨੀ ਹਮਾਰੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀਆਂ, ਕਿਤਨੀ ਬਰਾਦਰੀ ਕੇ ਝਗੜੇ, ਖਾਨਦਾਨੀ ਝਗੜੇ, ਕਿਤਨੇ ਲੋਕ ਕਹਿ ਲੇ ਕਿ ਗਮੰਡ ਸੇ, ਫਖਰ ਸੇ, ਗਰੂਰ ਸੇ, ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਸੇ ਯੇ ਵਾ ਸ਼ਗਾਫ ਅਲਫਾਜ਼ ਮੇਂ ਕਹਤੇ ਹੈ ਕਿ ਹਮ ਉਨਕੋ ਨਹੀਂ ਮਾਫ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਨਕੇ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਹਮ ਸੁਲਾਹ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਨਕੇ ਸਾਥ ਹਮ ਕੋਈ ਤਾਲਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਹਮੇ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਇਹ ਫਰਮਾਇਆ ਥਾ ਕਿ ਬਾਪ ਨੇ ਬੇਟੇ ਕੋ ਦੁਨੀਆ ਮੇਂ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਭੇਜਾ ਕਿ ਵੋ ਦੁਨੀਆ ਕੋ ਮੁਜਰਮ ਠਹਿਰਾਏ, ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਕੋ ਮੁਜਰਮ ਠਹਿਰਾਨੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਹਾਂ ਏਕ ਹੈ ਜੋ ਇਨਸਾਨੋਂ ਕੋ ਮੁਜਰਮ ਠਹਿਰਾਏਗਾ, ਉਹ ਕਿਆ ਹੈ? ਯਹੀ ਕਲਾਮ ਜੋ ਮੈਨੇ ਕੀਆ ਵੋ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਇਨਸਾਨੋਂ ਕੋ ਮੁਜਰਮ ਠਹਿਰਾਏ। ਇਸ ਕਲਾਮ ਕੇ ਤਰਾਜ਼ੂ ਪਰ ਮੇਰੀ ਔਰ ਆਪਕੀ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਨਏ ਸਿਰੇ ਸੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣੇ ਕੇ ਬਾਅਦ ਸੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਤੀ ਹੈ। ਹਮਾਰੀ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਇਸ ਕਲਾਮ ਕੇ ਤਰਾਜ਼ੂ ਮੇਂ ਪਰਖੀ ਜਾਏਗੀ। ਜੋ ਕੁਛ ਮੈਨੇ ਕਹਾ ਕਿਆ ਤੂਨੇ ਉਸਕੇ ਉੱਪਰ ਅਮਲ ਕੀਆ? ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਸੇ ਹਮੇ ਬਚਨੇ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਯੇ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਕਲੀਸਿਆ ਕੋ ਇੱਕ ਤਾਕਤਵਰ ਰੂਹਾਨੀ ਲਸ਼ਕਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨੇ ਦੇਗੀ। ਯੇ ਲਾਗਰ ਕਲੀਸਿਆ ਹੋਗੀ, ਬਿਮਾਰ ਕਲੀਸਿਆ ਹੋਗੀ, ਗੈਰ ਮੁਅੱਸਰ ਕਲੀਸਿਆ ਹੋਗੀ, ਔਰ ਕੋਈ ਖੁਦਾ ਕੇ ਲੀਏ ਕੋਈ ਯਾਦਗਾਰ ਕਾ ਪੱਥਰ ਨਹੀਂ ਗਾੜ ਪਾਏਗੀ। ਔਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆਪਣੇ ਹਰਬੋ ਮੇਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਕਭੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਮਾਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਸਹਿ ਕਰ ਬੜੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾ ਕਰ हमें अपने लिए मोल लिया, हम उसकी दुल्हन है, हम किसी गैर की तरफ हम नजर नहीं कर सकते हैं, हम उसकी मलकियत है और खास मलकियत है ताकि उसकी खूबियां जाहिर हो। एक और बात जिससे अबलीस की कुवतें कलीसिया को नुकसान पहुंचाती हैं और वो है मेरा और आपका एक दूसरे के लिए ठोकर का बायस बनना। और लिखा है मत्ती की इंजील के 18वें बाब में लिखा है 7वीं आयत में, ठोकरों का लगना जरूर है, ये नहीं हो सकता कि ठोकर ना लगे, अफसोस जिसकी वजह से ठोकर लगे। अब जब एक ईमानदार से दूसरे ईमानदार को ठोकर लगेगी, एक फैमिली से दूसरी फैमिली को ठोकर लगेगी, और यहां तक कि हमारे जैसे खादमों के जरिए से भी ठोकर लगती है। और मलाकी नबी के सहीफे में लिखा हुआ है काहिन जो है वो भी ठोकर का बायस बन सकता है क्योंकि वो खुद भी कमजोरी का कमजोरी में मुबतला होता है। तो जब कलीसिया में से इंसानों को एक दूसरे से ठोकर लगेगी तो जो रूह की यगानगत और ताकत है हमारी वो मुतासर होगी, दिलों में रंजिश होगी, नाराजगी होगी, और फिर दलेरी हम में है नहीं कि हम मुंह पे बात करें। ठोकर का तरीका ये है, रूहानी तरीका ये है, मेरे से किसी को ठोकर लगी है वो मुझे आकर कह के भाई आप किस बात से मुझे ठोकर लगी है, ताकि मैं उससे माजरत करूं। मुझे किसी से ठोकर लगी है मैं उसके पास जाऊं आपकी वजह से ऐसी ही है। जैसे मत्ती की अंजील के 16वें बाब में जब मसीह ने अपनी मसलूबियत का जिक्र किया तो पतरस ने क्या कहा, पतरस ने कहा तू क्या कह रहा कि तेरे साथ हो, खुदा ना करे कि ये सब कुछ तेरे साथ हो। तो मसीह ने कहा आए शैतान मेरे सामने से, आगे का लिखा है तू मेरे लिए ठोकर का बायस, मैं सलीब पर चढ़ने को, मैंने निजात दहिंदा बनना, मैंने कैदी रूहों को आजाद करना, मैंने इबलीस के जुल्म से और डर और खौफ से और गुनाह और बदी की ताकत से इंसानों को रिहाई देनी है, मैं अपनी रोया का, मैं अपने बोझ का, मैं अपनी असाइनमेंट का तेरे सामने जिक्र कर रहा हूं और तू मुझे उस काम से हटाना चाहता है, तू मेरे लिए ठोकर का बायस। और कभी कभी हमारी दनाई ये होती है कि हम किसी के लिए ठोकर का बायस बनते हैं और उल्टा हम समझ के बैठे होते हैं कि उसकी वजह से मुझे ठोकर लगी। उसका तरीकेकार रूहानी तरीकेकार ये है एक दूसरे से शेयर किया जाए, जैसे खुदावन यसु मसीह ने पतरस से कहा तू आदमियों की बातों का ख्याल करता है, मैं तो कोई मेरी जान मेरे से छीनता नहीं है, मुझे देने का भी इख्तियार है लेने का भी इख्तियार है, तो मैं तो खुशी से कुर्बान हूं, मुझे तो शर्मिंदगी की परवाह नहीं, मुझे तो सलीब की परवाह नहीं है, तू मुझे सलीब पर चढ़ने से रोक रहा, तू मेरे लिए ठोकर का बायस है। इसलिए जिस कलीसिया में खुदा के बंदे और बंदियां इस बात का एहसास नहीं रखते और ठोकरों का रूबरू इजहार नहीं करते, लिखा है अगर तेरा भाई गुनाह तेरा गुनाह करे तो जा खलवत में से समझा, तो ठोकरों की वजह से कलीसिया के अंदर मोहब्बत भी कोई दिखाई ना देगी, यगानगत और इतिहाद दिखाई नहीं देगा और कलीसिया रूहानी तौर पर कमजोर होगी, और यही इबलीस चाहता है कि इस तरीके से खुदावन के बदन को नुकसान पहुंचाया जाए। फिर एक और तरीका है कलीसिया खुदावन के बदन को नुकसान पहुंचाने का इबलीस का, वो है इजारसानी, दुख देना, सताना, डराना, धमकाना, कैद करवा देना, मुकदमे करवा देना, अमाल की किताब भरी पड़ी है, हंगामा करवा देना, बलवा करवा देना ताकि ये डर के चुप हो जाए, मुनादी ना करें, गवाही ना दें, एवेंजलिज्म ना करें, कुछ चर्च प्लांटिंग ना करें, बिशारत ना दें, अरशादे आजम के लिए घर से बाहर ना निकले, अमाल की किताब भरी पड़ी है इस सच्चाई से। मसीह ने कहा था मेरे नाम की खातर सब कौमें तुमसे अदावत रखेंगे, तुम्हें सताएंगे, उन्होंने उन नबियों को भी जो तुमसे पेशतर थे इसी तरह से सताया। जब उन्होंने हरे दरख्त यानी मेरे साथ ऐसा किया, तुम्हारे साथ भी ऐसा करेंगे। तो माल की किताब में हम देखते हैं कि यहूदी पड़े हुए हैं पीछे इब्तदाई कलीसिया के रसूलों के, गैर कौमें हैं, वो ललकारती हैं कि हमारी देवी अर्तमस देवी बड़ी है, ये कौन है जो हमें नई बातें आकर बताता है। खींचातानी की गई है, मार मार कर अधमुआ छोड़ के चले गए, बैत लगवा दिए हैं, कत्ल करना चाहते हैं। 40 बंदों ने कसम खाई है हम रोटी नहीं खाएंगे जब तक हम पौलुस को कत्ल ना करते। तो कलीसिया को गैर मुअस्सर करने का अबलीस का एक बड़ा हथियार डराना धमकाना। इसलिए अमाल की किताब में चौथे बाब की 21 आयत पढ़ लें, 29 आयत पढ़ लें, तो वहां लिखा है आए बाप इनकी धमकियों को देख, इनकी धमकियों को देख, जो कहते हैं कि खबरदार वो नाम लेकर बात ना करना, तुमने सारे जहान को गुमराह कर दिया, अपनी तालीम हर जगह तुमने फैला दी है, जो मारपीट करते हैं, हाथ उठाते हैं, अदालतों में पेश करते हैं, आए बाप आए मालिक इनकी धमकियों को देख, हमें दिलेरी का रू दे ताकि हम आदमियों की बात ना माने, हम तेरी बात माने जो तू कहता है। जाओ सारी खलक के सामने जेल की मुनादी करो, जो ईमान लाए और वो वाले वो नजात पाएगा। सो इजार सानी सताया जाना डराना धमकाना खौफ मुकदमा सास सजा दिलवाना अदालतों में पेशी मजामत करना रोकना मुदाखलत करना मुखालफत करना और फिर सबसे बढ़कर जुल्म, जुल्म भी एक बहुत बड़ा हथियार। मैंने कई साल पहले मैंने नजात पाई, मैं किताब पढ़ रहा था दुआ के ऊपर, 40 साल 42 साल हो गए हैं मुझे आज तक वो बात भूलती नहीं है कि चाइना में जब मसीहत को खत्म करना चाहा तो कई मसीहों को इस तरह से खड़ा करके एक घोड़ा इस तरफ और एक घोड़ा इस तरफ, और उस मसीही की एक टांग जंजीर के साथ एक घोड़े के पीछे और दूसरी टांग दूसरे घोड़े के पीछे बांध कर इसको कोड़ा मार कर इधर दौड़ाया जाता और उसको उधर, और इंसान बीच में से दो हिस्से हो जाते। आई कुडंट बिलीव कि इंसान इतना जालिम भी हो सकता है। मिशनरियों को जिंदा 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 दफन कर दिया गया, ये कह के यहां तक जब मिट्टी आ गई तो बीवी को सामने बच्चों को पेश कर दिया कि मसीह का इनकार करवर दें, हम तो हम छोड़ देंगे तुझे। और आफरीन है ऐसी बीवियों पर ऐसी माओ पर जिन्होंने कहा ना हमारी परवाह ना कर, मसीह के साथ वफादार रहना। ये वो लोग हैं जो मार खाते खाते मर गए, उन्होंने रहाई कबूल ना की, जिनको आरे में चीरा गया, जिनको जानवरों की गीली खाल में सीकर धूप में फेंक दिया गया, लेकिन वो अपने ईमान पर कायम रहे। वो जारी ईमानदार नहीं थे, अंदर रोशनी थी, खुदा की मोहब्बत थी, सच्चाई की पहचान थी। लिहाजा तारीखी एतबार से देखा जाए तो बहुत बड़ा हथियार जुल्म करके डरा कर अजियतें देकर। हमारे एक इस्लामी मुल्क में वो जर्मन मिशनरी थे और वो बिजनेसमैन थे और साथ वो अंजील की मुनादी करते मसीह के गवाह थे। तो उनके पास दो तीन लड़के आगे कहने लगे हमें मसीह बड़ी अच्छी लगती है, हम आपसे तालीम लेना चाहते। उन्होंने कहा लो, उन्होंने अपने घर में उनको बुला के तो उनको शागिर्द बनाना शुरू किया, आते रहे आते रहे। एक दिन वो कहने लगे हमारे दो तीन दोस्त हैं वो भी आना चाहते हैं। उन्होंने कहा उनको भी बुलाओ, वो भी आ गए। एक दो बाइबल स्टडीज उन्होंने अटेंड की। एक दिन वो दो तीन जो दोस्त आए थे नए, وہ پستول اور خنجر چھپا کر بائبل سٹڈی کرنے کے لیے مشنری کے پاس آ گئے۔ جب بائبل سٹڈی ختم ہوئی تو جیسے بھائی ناتن بیٹھے ہیں انہوں نے اس مشنری کو اس کرسی کے اوپر باندھ دیا۔ باندھ کر پہلے انہوں نے خنجر سے اس کے ہونٹ کاٹے، پھر اس کے کان کاٹے، پھر انہوں نے اس کی انگلیاں کاٹی، پھر ہتھیلی کاٹی، ٹکڑے ٹکڑے کر کے دروازہ لاک کر کے اوپر سے کود کر کے وہ بھاگ گئے۔ اور سب کو نہیں پتا یہ بڑا اذیت ناک کام ترکی میں ہوا ہے۔ مجھے کسی نے اس کی ساری سٹوری کی ای میل، میں دو راتیں سو نہیں سکا۔ میں نے تو بھی آپ کو آدھا ہی بتایا ہے جو میں نے پڑھا اسے۔ آج میں آپ کو یہ بھی کہنا چاہتا ہوں، میرے اور آپ کے دل سے بے انتہا شکر گزاری نکلنی چاہیے کہ اس ملک میں رہتے ہوئے ابھی ہم نے اتنا ظلم، خدا کی نگاہ ہے ہمارے اوپر، خدا کی شفقت کا ہاتھ ہے ہمارے اوپر، اور جو دعا ہم کرتے ہیں کہ مجھے آزمائش میں نہ پڑنے دے، یہ وہ آپ کی دعا ہے جو خدا نے سنی ہوئی ہے، اور ہم آزادی سے عبادات کر رہے ہیں، ہم مسیح کے گواہ بن رہے ہیں۔ اور کوئی بڑا ظلم، میں تو کہتا ہوں جب کوئی ظلم کی گھڑے وقت آگے اس وقت ہمارا کیا ہوئے گا۔ تو ظلم جو ہے کلیسیا کو برباد کرنے کا، اور یہ بات بھی امال کی کتاب میں لکھا ہے، اس دن یروشلم کی کلیسیا پر بڑا ظلم ہوا، لوگوں کے گھر لوٹ لیے گئے، جلا دیے گئے، وہ بچارے بچی کچی چیزیں اپنی جانیں بچا کر وہ بھاگ گئے یروشلم سے، ظلم کی وجہ سے تتر بتر ہو گئے۔ لیکن آفرین ہے، ظلم سے کر بھی جدھر بھی گئے، خدا کے کلام کی گواہی دیتے گئے، بیج بوتے گئے، اور ان کے نتیجے میں امال کی کتاب کے آٹھویں باب میں آپ پڑھیں گے سامریہ میں بیداری آ گئی۔ اس لیے عبرانیوں کے خط میں لکھا، ان پہلے دنوں کو یاد کرو کہ تم نے منور ہونے کے بعد دکھوں کی بڑی کھکھیڑ اٹھائی، تمہارا مال لٹ گیا، تم نے کہا پرواہ نہیں، ہمیں مسیح مل گیا، ہمیں مال لٹ گیا، ہمیں مال کی پرواہ نہیں، اپنی جانوں کی تم نے پرواہ نہ کی، تمہیں ٹھٹھوں میں اڑایا گیا، گھر سے بے گھر ہو گئے تم، مہاجر ہو گئے تم۔ ان پہلے دنوں کو یاد کرو، اپنے ابتدائی بھروسے پہ قائم رہو۔ تو کلیسیا کو کمزور کرنے کے لیے، غیر مؤثر کرنے کے لیے ایک ہتھیار دنیا داری کا، جو عام طور پر گناہ نہیں لگتا، اس کے ذریعے سے، ٹھوکروں کے ذریعے سے، ازار آسانی کے ذریعے سے، ڈرا دمکا کے، سزا کے دے کے، خوف زدہ کر کے، قانون کی آڑ میں عدالتوں سے سزا دلوا کے، ہنگامہ کر کے، جلوس نکال کے، مزاحمت کر کے، مداخلت کر کے، گھروں کو گھیر کر، جلاؤ گھراؤ کر کے، نعرے مار کے، خوف زدہ کرنا، چپ ہو کے یہ بیٹھ جائیں، اپنے خداوند کی بات نہ کریں، یہ خداوند کے بدن کو برباد کرنے کا ایک بڑا ذریعہ ہے ابلیس۔ پھر پانچواں طریقہ ہے زر کی دوستی، روپیہ پیسہ، جبکہ لکھا کہ زر کی دوستی سب برائیوں کی جڑ ہے۔ جب لکھا ہے کہ زر کی دوستی سے خالی رہو، زر ہمیں چاہیے، روپیہ پیسہ ہماری ضرورت ہے، خدا دنیا میں زندگی کے اچھے دن دکھانے کے لیے ہمیں روپیہ پیسہ دیتا ہے جتنی ہماری ضرورت ہے، لیکن زر کی دوستی انسان کے اندر لالچ پیدا کرتی ہے، اور لالچ جو ہے بائبل میں بت پرستی کے برابر ہے، اور اس بت پرستی کو خداوند نے اس طرح سے بیان کیا تھا کہ تم، پہلے انہوں نے کہا کوئی نوکر دو مالکوں کی خدمت، پھر انہوں نے ذرا صاف الفاظ میں بیان کر دیا کہ تم خدا اور دولت دونوں کی خدمت، یعنی ایک طرف خدا ہے اور دوسری طرف دولت خدا ہے، دولت کو پوچھتے جائیں، خدا کو پوچھ جائیں، دونوں کو نہیں پوچھ۔ بہنوں بھائیوں، غربت، تنگی، روپے پیسے کی کمی، چیزوں کی کمی کے باعث ہم غریب ممالک کے لوگ اور خصوصاً اس ملک میں رہنے والے مسیحی اس آزمائش میں پڑتے ہیں۔ پیسہ پیسہ پیسہ، پیسے کے پیچھے بھاگنا ترجیح پیسہ ہے، چیزیں ہیں، آسائش ہے، سہل زندگی ہے، روشن مستقبل ہے، بھلے فراڈ کر کے باہر نکل جائیں کہیں۔ کتنے شرم کی بات ہے کہ ہمارے ایوانوں تک جیلی ڈگریاں لوگ لے کے تو بڑے بڑے عہدوں پہ بیٹھے ہوئے۔ پیسہ جس کے بارے میں اتنی تنبیہ لکھی تیموتھی کے خط میں کہ بعض نے دولت مند بننے کی خاطر اپنے دلوں کو طرح طرح کے غموں سے کیا کر لیا ہے۔ ابھی اگر آپ نے صبح نیوز سنی ہو تو لاہور میں جائیداد کے تنازع پہ 3-4-5 افراد فیملی کے قتل ہو گئے، بہن قتل ہو گئی، بھانجی قتل ہو گئی، سب کے بھائی کو قتل، جائیداد، پیسہ۔ بہت کم لوگ ہیں جو اپنی پوشاک کی حفاظت کی خاطر روپے پیسے کا، جائیدادوں کا نقصان برداشت کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، بہت کم لوگ۔ ورنہ زر کی دوستی ہے، زر پر بھروسہ ہے، بینک بیلنس ہے، چیزیں ہیں، گاڑیاں ہیں، اپنا مکان ہے۔ بھائی جن کا اپنا مکان نہیں ہے وہ بھی اپنی مسافت کا زمانہ گزار کے چلے ہی جائیں گے دنیا۔ بد دیانتی اس کی وجہ سے ہوتی ہے۔ مکاشفہ کی کتاب کے 3 باب کی 17 آیت میں لودکیا کی کلیسیا سے خدا کیوں ناراض ہے کہ تو جو کہتا ہے کہ میں دولت مند ہو گیا ہوں اور میں کسی چیز کا محتاج نہیں، تو نہ سرد ہے نہ گرم ہے، کیوں؟ ملی جلی زندگی ہے تیری، عبادت کے وقت عبادت، گناہ کے وقت گناہ۔ عبادت کے وقت خدا کے بھی گیت گا لیے، باہر جا کر اور بھی کچھ گا لیا، ادھر بھی شہربانی بھی لے لی، باہر کچھ اور بھی سوٹے لگاتے رہے۔ کلیسیا کے کئی لوگ ہیں سگریٹ پیتے ہیں، بپتسمے لیے ہوئے ہیں، چرچ کے ممبر ہیں، سوٹے لگا رہے ہوں گے، میں دیکھ رہا ہوتا ہوں۔ گالی گلوچ اور ایسی زندگی، جو بھی دیکھتا ہے ٹھوکر کھاتے۔ یار یہ ایماندار، اتنے سال ہو گئے اس کو بائبل لے کے گھومتا، کتنے شرم کی بات ہے۔ اور میرے اور آپ کی وجہ سے خدا کے نام پر کفر بکا جائے، کتنے شرم کی بات ہے اس لیڈر کے لیے جس پر یہ بات صادق آئے کہ یہ موسیٰ کی گدی پر بیٹھے ہیں اور یہ نہ خود خدا کی بادشاہی میں کسی کو داخل ہونے دیتے ہیں نہ خود ہوتے ہیں۔ یہ کتنی شرم کی بات ہے۔ دیکھیں اگر تمہارے اندر تھوڑی سی بھی تاریکی ہوگی تو وہ تاریکی کتنی بڑی ہوگی۔ اس لیے مسیح نے کہا تھا کہ دنیا کا سردار آتا ہے، اس میں اس کا مجھ میں کچھ نہیں ہے۔ سو زر کی دوستی سے خالی رہنا، روپیہ پیسہ کمزوری ہے تو خدا کے قدموں میں اس بات کو رکھنا کہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ اگر تمہارے پاس تن ڈھانپنے کے لیے کپڑا ہے، اگر خدا روز کی عزت کے ساتھ روٹی دے دیتا ہے تو قناعت کے ساتھ خدا کی شکر گزاری کیجئے۔ جو اضافی برکات خدا دے دے شکر گزاری سے لی جائیں، ان کو استعمال کیا جائے۔ خدا کے حضور اپنے ہونٹوں کا پھل حمد و تمجید شکر گزاری کرتے ہوئے پیش کیا جائے۔ لیکن دولت مند بننے کی خواہش بہت بری ہے۔ کئی شادی شدہ زندگیاں میں نے تباہ ہوتی دیکھی، कर्ज ले ले, शादियां कर लिया, बेबियों का जेवर बेच दिया, उनकी बड़ी इमोशनल अटैचमेंट होती है औरत की दुल्हन की, कई इस तरह के शौहर हैं, मैरिज लाइफ तबाह करके बैठ गए, तलाकें हो गई हैं, जर की दोस्ती। यहूदा इस्करियोती को कितना बड़ा आजाज मिला मसीह का शागिर्द बनने का, खजांची उसको बनाया तो वहीं से पैसे निकाल निकाल के, तो बद्यानत, नतीजा क्या निकला, मरवा दिया जर की दोस्ती ने इस शागिर्द को भी। तो जर जो है इसकी चमक, इसकी कशिश, इसकी भूख, एहतियाज, इसके पीछे भागना, जायज नजायज की परवाह ना करना। अब बच्चों को ऐसी आग में झोंक देना, मैं तो जिक्र नहीं करना चाहता कोई ठोकरी ना खा जाए, मैं बहुत सारी जगह देख रहा हूं मुस्तकबिल बर्बाद कर रहे हैं, चार पैसे ज्यादा आ रहे हैं बस, खिदमत को मुंह नहीं करते लायक लोग। मैं हमेशा कहता हूं पाकिस्तानी चर्च को हाईली एजुकेटेड लोगों की जरूरत है इस मुल्क में खुदा के जलाल के लिए, गवाह बनने के लिए। हमारे बच्चे मुंह नहीं करते, क्यों, क्या मिलेगा, क्या फायदा होगा। आज की दुनिया में जर एक ऐसा खुदा बन गया है, कैदा ऐसा बुत बन गया, ऐसा माबूद बन गया है कि बहुत सारे लोग मानेंगे भी नहीं, लाशौरी तौर पर उसकी पूजा कर रहे होंगे। खुद इनकारी है, कनात है, अब बरकात में से दूसरों को शामिल करना है, वो खाल खाल हमें नजर आएगा। और आखिरी बात जो खुदावन ने मेरे दिल में डाली है, जो अबलीस इंसानों पर, कलीसिया पर वार करता है, वो है इंसानों की अकल पर, थिंकिंग, सोच के ऊपर पर्दा डाल देना। क्रंथस की कलीसिया को खत लिखते हुए बुजुर्ग पौलुस ने कहा था हमारे अंदर मसीह की अकल है, जिसका मुराद है, जिससे मुराद है, जैसे मसीह सोचता है उसका माइंड हमारे अंदर है। वो जो लिखा है ना कि वैसा ही मजाज रखो जैसा मसीह यीशु का भी था, उर्दू में जरा उसको समझना मुश्किल है, वहां मजाज का लफ्ज अंग्रेजी में माइंड है, वैसा ही जहन रखो, वैसी सोच रखो जैसे यीशु मसीह की भी थी। अब शैतान क्या करता है, शैतान इंसान की सोच पर हमला करते। कायद देखें मेरे साथ जरा, आप इस बात को समझने के लिए तीतस का खत निकालें, उसका पहला बाब, दूसरे तमोतियस के बाद तीतस का खत है, उसका पहला बाब 15वीं आयत में पढ़ने लगा हूं आपके सामने। तीतस के नाम पौलुस रसूल का आम खत, पहला बाब 15वीं आयत में लिखा है, पाक लोगों के लिए सब चीजें, मगर गुनाह आलूदा और बेईमान लोगों के लिए कुछ भी, बल्कि उनकी अकल और दिल दोनों क्या है, गुनाह आलूदा है। मैं इसको इस तरह से समझता हूं, इधर देखिए, अगर इस तरफ से कोई दरिया बह रहा हो, फर्ज करिए इस तरफ से कोई दरिया बह रहा हो, और जिधर से बह रहा है वहां से कोई खून पानी में शामिल कर दिया जाए, तो आहिस्ता आहिस्ता उस पानी के साथ उस खून के कोई निशानात जाहिर हो सकते। अगर दरिया का पानी बहुत ज्यादा है और आगे जाकर वो नजर ना भी आए, लेकिन जहां से आप डालेंगे तो वो प्योर पानी में जब खून शामिल हो जाएगा तो वो आलूदा हो जाएगा, कसाफत वाला हो जाएगा, वो कसीफ नहीं रहेगा। यहां लिखा है कि इंसानों के दिल और अकल दोनों दोनों जो हैं वो अलूदा हो जाते हैं, यानी शैतान इंसान की अकल पर क्या करता है, असरअंदाज होता है, तो उसकी थिंकिंग शैतानी हो जाती है, बुरे मंसूबे बनाएगा, बुरे ख्यालात आने शुरू हो जाएंगे, बदगुमानियां पैदा हो जाएंगी। इसलिए जब निजात मिलती है तो लिखा है रोमियों के खत के 12वें बाब की 2 आयत में लिखा है, इस जहान के हम शकल, क्योंकि इस जहान की एक शकल है जो मैंने सूरे पढ़ के नहीं बताई आपको तीतस के खत में, इस जहान के हम शकल ना बनो। आगे का लिखा है, आगे लिखा है बल्कि अपनी अकल के नए हो जाने के सबब से अपनी सूरत बदलते जाओ। यानी जब निजात मिलती है तो खुदा अकल को भी बदलता है, क्योंकि पुरानी अकल जो है उस पर शैतान का कब्जा होता है। क्रंथस की कलीसिया को खत लिखते हुए पहले खत के मैं 2 बाब की 14 आयत में लिखा है, हमारे अंदर मसीह की अकल है। मसीह की अकल हमारे अंदर कब आती है? जब हम मसीह को कबूल करते हैं। पुरानी चीजें जाती रही, पुरानी अकल जाती रही, पुरानी इंसानियत जाती रही, अकल नई हो जाने, इसी को पतरस कहता अपनी अकल की कमर बांध कर, क्योंकि माइंड जो है, ये जो ब्रेन है हमारा, ये हमारी सारी बॉडी को कंट्रोल करता है, ठीक है। और ब्रेन से एक नर्व है जो इंसान की रीढ़ की हड्डी में से गुजरती, जिसे स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं या हरा मगज कहते हैं। ब्रेन से तमाम जो अहकामात हैं उसके जरिए से बदन के सारे अज़ा में मुंतकिल होते हैं। आप नंगे पांव जा रहे हैं, आपके पांव में कांटा चुभ गया है, तो ब्रेन जो है वो पांव को हुक्म देगा एकदम ऊपर कर ले। आप किसी गर्म चीज को पकड़ लेते हैं, ब्रेन फौरन हुक्म देता है छोड़ दो इसको, गर्म है। इसलिए जब ये स्पाइनल कॉर्ड जो है वो काम नहीं करती तो लोग नीचे से पैरालाइज हो जाते हैं, बदन के अज़ा काम नहीं करते। तो हमारा जो ब्रेन है, हमारा ज़ेहन है, जो हमारी थिंकिंग कैपेसिटी है, सोच की जो जगह है जो खुदा ने रखी हुई है, ये ऐसे ही है। मैं कई दफ़ा, मुझे मौका मिला ये फौजी छावनियों में जाने का, और कई दफ़ा मैंने देखा है कि फौजी छावनियों में जो टैंकी होती है तो उस पर मसाला गार्ड है। मैं सोचता हूँ कि ये पानी की क्यों हिफाजत करते हैं, मसाला गार्ड है। देखिए कि अगर कोई जासूस आकर किसी छावनी में जहाँ से सिपाही पानी पीते हैं तो जहाँ उस टैंकी में जहर डाल दे तो जिस जिसने पीना है उसने मरना है ना, इसलिए वहां गार्ड बिठाए जाते हैं कि कोई दुश्मन इस तरह से ना ही काम कर ले। हमारे ज़ेहन की टैंकी है इधर, है कि नहीं? यहां जब अबलीस की कुवतें, इस जहान का खुदा जब यहां पर्दा डाल देता है तो फिर हम खुदा के काम, खुदा की सोच नहीं हम सोचते, फिर हमारी सोचें जो हैं वो पलीद हो जाती हैं, अलूदा हो जाती हैं, पलूटेड हो जाती हैं, दुश्मन उसे छू देता है। लेकिन खुदा का शुक्र हो, जब कोई शख्स निजात पाता है उसकी अकल बदल जाती है। तो लिहाजा अगर किसी का दिल भी अलूदा हो, उसकी अकल जो है उस पर भी अबलीस का कब्जा हो, तो उससे हम नेकी की, सच्चाई की, भलाई की क्या तोपो कर सकते हैं। इसलिए इफिसियों के खत के 2 बाब की 1-2 आयत पढ़ी जाएं तो वहां लिखा है, उसने तुम्हें भी जिंदा किया जब तुम अपने गुनाह और कसूरों के तबार से मुर्दा थे और दुनिया की रवश पर चलते थे। और आगे भी एक बात लिखी, आगे लिखा है और जिस्म और अकल के इरादे पूरे करते थे। ये लिखा हुआ जिस्म और अकल के इरादे पूरे करते थे, क्योंकि शैतान ज़ेहन में डालता है और फिर इंसान के बदन के अज़ा इस्तेमाल करवा के तो उसे गुनाह करवा रहे। लेकिन जब कोई शख्स सच्ची तौबा कर लेते हैं तो इस अकल से, इस जहान के खुदा का, तारीकी का पर्दा मसीह के कफारे की कुदरत के सबब से हटा दिया जाता है, इंसान नया इंसान बन जाता है, नया मखलूक बन जाता है, उसकी अकल नहीं हो जाती है, वो वैसे ही सोचने लगता है जैसे अगर हमारी जगह खुदाम यीशु मसीह होते तो वो सोचते। इसलिए लिखा कि हमारे अंदर मसीह की अकल है और इसलिए हमसे ये तुक्को की जाती है कि हम अपनी अकल की हिफाजत करें। और अकल की हिफाजत करने का बेहतरीन तरीका तन्हाई में खुदा के हजूर बैठना, ताकि खुदा की हजूरी हमारे दिल दिमाग और अकल पर छाई रहे, कब्जा किए रहे। और लिखा जो दिल में भरा वही जबान पे आता है। अगर खुदा की रूह हम पर छाई रहेगी तो फिर अंदर से अच्छाई निकलेगी, रास्ती निकलेगी, पाकीजगी निकलेगी। आखिरी हवाला हमें हम देखेंगे यर्मिया नबी का सहीफा, उसका 15वां बाब निकाल लें तो फिर हम दुआ करेंगे। यर्मिया नबी का सहीफा कलीसिया को कैसे अबलीस इस बदन को नुकसान पहुंचाता है। इंसानी बदन की भी खुदा के निगाह में बड़ी अहमियत है और कलीसिया भी मसीह का बदन है और शैतान की निगाह में भी इसकी बड़ी अहमियत है। यर्मिया नबी का सहीफा उसका 15वां बाब और उसकी मैं दो याद पढ़ूंगा आपके सामने, 19 और 20। यर्मिया नबी का सहीफा उसका 15वां बाब 19 और 20वीं आयत में लिखा है, इसलिए खुदावन यूं फरमाता है कि अगर तू बाज आए तो मैं तुझे फेर लूंगा, फेर लाऊंगा और तू मेरे हजूर, और अगर तू लतीफ को कसीफ से जुदा करे तो तू मेरे मुंह की मानद होगा, वो तेरी तरफ फिरे लेकिन तू उनकी तरफ ना फिरना, और मैं तुझे इन लोगों के मुकाबल पीतल की मजबूत दीवार ठहराऊंगा, ये तुझसे लड़ेंगे लेकिन तुझ पर गालब, क्योंकि खुदावंद फरमाता है मैं तेरे के तेरी कब करेगा, जब हम लतीफ को कसीफ से क्या करेंगे। लतीफ का मतलब है प्योर, खालस, शफाफ। कसीफ का मतलब है जो चीज खालस ना हो, जिसमें कसाफत हो और चीजें मिली हुई हो। तो अगर तू लतीफ को कसीफ से जुदा करे, कलीसिया के लिए है, हमारे लिए है कि अगर हम लतीफ को कसीफ से जुदा करें, मिली जुली जिंदगी बसर ना करें, दो मालकों की खिदमत ना करें, दो अफराद से मोहब्बत ना करें, दो मालकों की खिदमत ना करें, सिर्फ एक ही मालक है हमारी रूहों का, अगर तू लतीफ को कसीफ से जुदा करे तो तू मेरे मुंह की मानद होगा, यानी कलीसिया के वसीले से खुदा की आवाज माशरे तक पहुंचेगी, खुदा की आवाज माशरे तक पहुंचेगी, तू मेरे मुंह की मानद होगा, उससे बात सुन ली समझे, खुदा की आवाज सुन ली, और फिर कलीसिया इतनी मजबूत होगी कि मैं तुझे इन लोगों के मुकाबल पीतल की मजबूत दीवार बना दूंगा। खुदा अपनी कलीसिया को, अपने बदन को एक मजबूत दीवार देखना चाहता है, पीतल या लोहे की दीवार की तरह, जिसको आसानी से गिराया ना जा सके, डराया ना जा सके, धमकाया ना जा सके, पीछे हटने पर मजबूर ना किया जा सके, ईमान में कायम रहे, शिकस्त ना खाए, मगलूब ना हो, खुदा की सच्चाइयां साबित करने के लायक हो जाए। तुझे इन लोगों के मुकाबले पीतल की मजबूत दीवार ठहराऊंगा और ये तुझसे लड़ेंगे लेकिन तुझ पर गालब, क्यों, इसलिए कि मैं तेरे साथ हूं, कि तेरी क्या करूं। अब हम इतना तो हम सोच कर अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान में मौजूद कलीसिया मिट्टी की दीवार की तरह है या पीतल की मजबूत दीवार की तरह। पीतल की मजबूत दीवार की तरह खुदावन का बदन और कलीसिया उस वक्त बनेगी जब हम लतीफ को कसीफ से जुदा करें। प्योर लाइफ, खुदा के साथ चलना है तो ठीक ठीक हम खुदा के साथ चलें, नहीं चलना तो ये रियाकारी, रुपया पान, ये ज़ाहरी रूहानियत दीनदारी की वजह रखना उसके असल को कबूल ना करना, खुदा के कलाम का लिहाज रख कर जिंदगी बसर ना करना, सरीयन खुदा के कलाम के खिलाफ वर्जी करना, तोहीन करना, इनकार करना अपने कामों से, तो उससे कोई फायदा नहीं है, उल्टा हमें नुकसान है। तो हमें अबलीस के हीलों और हमलों को समझने की ज़रूरत है ताकि हम शिकस्त खुर्दा कौम और कलीसिया और मसीह का बदन ना रहें, बल्कि हम खुदावन में उसकी कुदरत के जोर में इतने मजबूत बने कि बदी की और खौफ की हम यलगार और ताकतों और पेश कदमी के सामने हम एक मजबूत पीतल की दीवार बन जाएं। वो हम खुद नहीं बन सकते, वो हम खुद नहीं बन सकते, वो पाक जात हमें, हमारा आसमानी बाप हमें बनाएगा जिसने हमारे साथ वादा किया है।